दिन भर तारीख 29 जनवरी दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। जिनेवा में होने वाली सीरिया शांति वार्ता में विपक्ष शामिल होगा या नहीं, संदेह के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं।
The best thing that we can hope for over the next few weeks and maybe the next couple of months.
रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले में हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में आंदोलन जारी, लेकिन आज शोधकर्ताओं को प्रयोगशाला में आने दिया गया। 30 जनवरी 1948 को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने जब गोली मारी तो
जब ठा ठा हुआ तो गिर गए, तो लोगों ने तो उनकी तरफ गड़े, हम उस अकेले गांधी को देख रहे थे, अकेले लेटा हुआ था, तो हमको तो उसकी बुझती आंखें ही।
सुनाएंगे आपको विवेचना, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में जनेवा में आज से होने वाली सीरिया शांति वार्ता में सीरियाई विपक्ष शामिल होगा या नहीं, इस पर अभी भी संदेह की स्थिति बनी हुई है। सीरियाई सरकार की तरफ से प्रतिनिधिमंडल शांति वार्ता में शामिल होने के लिए समय पर जनेवा पहुंच चुका है। मानवाधिकार समूह ह्यूमन राइट वॉच ने कहा है कि ईरानी अधिकारी कुछ अफगान शरणार्थियों पर सीरिया जाने और लड़ने के लिए दबाव डाल रहे हैं। ईरान की सरकार सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन करती है और उन्हें कुछ सैन्य सहायता भी मुहैया कराती है। इनमें वे भी शामिल हैं जिन्हें सरकार शिया मुसलमानों के पवित्र स्थानों की रक्षा करने वाले अफगानी स्वयंसेवक कहती है। ह्यूमन राइट वॉच के मुख्य पीटर बुकार्ट का कहना है कि अफगान गुटों के साथ किए गए साक्षात्कार से पता चला है कि उनमें से कईयों को लड़ने के लिए बाध्य किया जा रहा है। कईयों को ऐसा न करने पर देश से निकालने की भी धमकी दी जा रही है। प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने चेतावनी दी है कि तुर्की से समुद्र पार कर ग्रीस आने की कोशिश में समुद्र में डूबकर मरने वाले प्रवासियों की संख्या काफी बढ़ गई है। संगठन के प्रवक्ता जोएल मिलमैन ने कहा है कि ऐसा लगता है कि ग्रीस पहुंचने के लिए प्रवासी अधिक खतरे लेने के लिए तैयार हैं। मिलमैन का कहना है कि इस साल की शुरुआत से अब तक इस प्रकार मरने वालों की संख्या 200 से अधिक हो गई है। सिंगापुर की एक अदालत ने उत्तर कोरिया से जुड़े एक जहाज कंपनी पर $1,00,000 से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए उत्तर कोरिया को हथियार मुहैया कराने का आरोप है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर में पंजीकृत इस कंपनी चिनपो पर आरोप है कि इसने क्यूबा के जंगी जहाजों जिनमें से कुछ 2013 में पनामा में जब्त किए गए थे को चीनी के बोरों के नीचे छिपाकर लाने की व्यवस्था की थी। जहाज के कंपनी के प्रवक्ता एडमंड परेरा ने कहा, मेरी राय में कंपनी पर लागू करने के लिए सुनाया जाने वाला फैसला थोड़ा सा कठिन है। मामले के हालात को देखते हुए मैं कहूंगा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह कंपनी सिंगापुर में है, मेरा मतलब है कि एशिया में है, और इसे उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा रहा है जो इसके जहाजों के साथ विदेश में हुआ है। ये थे जहाज कंपनी चिनपो के प्रवक्ता एडमंड परेरा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। 3 चीनी कार्यकर्ताओं को तोड़फोड़ करने के आरोप में 5 की कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपियों पर सविनय अवज्ञा के विचारों को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए हैं। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि तान जिंगलिंग, वांग किंगयिंग और युआन जिनटिंग पर सजा देना चीनी सरकार के शांतिपूर्ण विरोधों के खिलाफ बढ़ते शत्रुता के रवैये की ओर इशारा करता है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम अंतर्राष्ट्रीय खबर से कर रहे हैं। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में सीरिया को लेकर होने वाली शांति वार्ता के कुछ घंटे पहले तक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। इस बात पर असमंजस बरकरार है कि कौन कौन से विरोधी गुट इस वार्ता में शामिल होंगे और कौन नहीं। विपक्ष के वरिष्ठ नेता के मुताबिक सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का विरोध करने वाले कई समूह वार्ता के लिए जिनेवा पहुंच रहे हैं, लेकिन इससे पहले कुछ विरोधी गुटों ने वार्ता के बहिष्कार की चेतावनी दी थी। उनकी मांग है कि वार्ता तभी हो जब नागरिकों पर बमबारी बंद करने पर सहमति बने। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए अमर शर्मा से।
जिनेवा में पत्रकार वार्ता में संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता अहमद फावजी शांति वार्ता को लेकर पैदा हुई स्थिति को साफ करने में असमर्थ दिखे।
All I can say about the talks is that they will start as planned, as Staffan de Mistura announced.
मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि स्टेफान डी मिस्तुरा की घोषणा के अनुसार तय समय पर वार्ता होगी। मैं कोई समय नहीं बता सकता, मुझे किसी नियत स्थान की जानकारी नहीं है और मैं प्रतिनिधि मंडलों के बारे में भी नहीं बता सकता, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में कुछ और जानकारी होगी, मैं इतना वादा कर सकता हूँ।
अहमद फाउजी के शब्द। सीरिया में नागरिकों की सुरक्षा का अभियान चलाने वाले समूह सीरिया कैंपेन की सलमा काहेल ने जेनेवा में बीबीसी को बताया कि सीरियाई लोगों की मांग है कि नागरिक ठिकानों पर हमला पूरी तरह से बंद किया जाए।
Many of them are frustrated with what they feel are talks that will not lead to.
ज्यादातर लोग इस बात से हताश हैं कि इन वार्ताओं के बाद जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वे इस बात से भी नाराज हैं कि युद्ध अपराधों पर भी समझौता हो जाएगा, इसलिए उन्हें लगता है कि ऐसे कार्यक्रम जिससे घेराबंदी, बमबारी और बंदियों के मुद्दों पर समझौतों की बात होती है, इससे वार्ता का स्तर गिरता है। युद्धरत पक्ष ऐसे दाव पेंचों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें युद्ध अपराधों से समझौता कर लिया जाता है। खास तौर से असद सरकार ऐसा कर सकती है।
सलमा काहेल के शब्द। संयुक्त राष्ट्र के दूत स्टेफान डी मिस्तुरा ने सीरिया के लोगों को एक वीडियो संदेश के जरिए अपील की है कि वो अपने नेताओं पर शांति बहाल करने के लिए दबाव डालें। उन्होंने कहा कि सीरिया में शांति बहाली की इस कोशिश को नाकाम होने नहीं दिया जा सकता। सीरिया में अमरीका के पूर्व राजदूत रॉबर्ट फोर्ड ने बीबीसी को बताया कि उन्हें इस वार्ता से ज्यादा उम्मीदें नहीं है।
Over the next few weeks and maybe the next couple of months.
सबसे ज्यादा इस बात की आशा की जा सकती है कि कुछ हफ्तों या महीनों में सीरिया सरकार के वार्ताकार और विरोधियों के बीच इस बात पर सहमति बन जाए कि नाकाबंदी हटा दी जाए और मानवाधिकार संगठनों को दौरा करने दिया जाए। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं कि सीरियाई सरकार या विरोधी दोनों में कोई भी ऐसी बड़ी रियायत देंगे जिससे कोई राजनीतिक सौदा संभव हो पाए।
रॉबर्ट फोर्ड के शब्द। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संस्था के एड्रियन एडवर्ड्स ने बीबीसी को बताया कि सीरिया में स्थिति मायूस करने वाली है और वार्ता में मानवीय जरूरतों पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। एडवर्ड्स ने कहा कि सीरिया की स्थिति भयावह है और लगातार बदतर होती जा रही है। 1,30,00,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं, जिनमें आधा संख्या बच्चों की है। करीब 7,00,000 लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं जिन्हें तत्काल मदद की जरूरत है। पिछले साल दिसंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों के बीच इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण सहमति बनी थी कि सीरियाई सरकार और विपक्ष के बीच जनवरी की शुरुआत में वार्ता कराई जाए और संघर्ष विराम लागू कराया जाए। साथ ही सीरिया में 18 महीनों के भीतर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में चुनाव कराने की समय सारिणी तय की जाए। सीरिया की सरकार से लड़ रहे विपक्षी दल और उनका समर्थन कर रहे पश्चिमी देशों को इस बात पर सहमति बनानी है कि विद्रोहियों के किस गुट को चरमपंथी घोषित किया जाए और वार्ता से दूर रखा जाए। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ मार्च 2011 में बगावत की शुरुआत हुई थी।
जिनेवा में होने वाली सीरियाई शांति वार्ता में विपक्ष शामिल होगा या नहीं, इस पर अभी भी संदेह के बादल मंडरा रहे हैं।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और आइए भारत का रुख करते हैं। दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले में पिछले 12 दिनों से हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में जारी आंदोलन अभी भी चल रहा है, लेकिन आज शोधकर्ताओं को प्रयोगशाला में आने दिया गया। आंदोलनकारी छात्र विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति के साथ साथ केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय को भी हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। बेंगलोर से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
13 दिन के बाद बहुत सारे छात्र और अध्यापक हैदराबाद के विश्वविद्यालय में गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया है। हैदराबाद सेंट्रल विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष जुहेल केपी कहते हैं, सिर्फ कैंपस बंद वापस लिया गया है। हमारा आंदोलन उन 6 मांगों पर जारी रहेगा। कैंपस बंद वापस लेने का उद्देश्य यह था कि हमारे छात्र नौकरी के लिए यहाँ चल रहे कैंपस इंटरव्यू में हिस्सा ले सके और हम उनके रास्ते में नहीं आना चाहते। लेकिन यहाँ कोई अध्यापक क्लास नहीं ले रहा है क्योंकि वह हमारी अपील पर ध्यान दे रहे हैं। ये थे जुहेल केपी के शब्द। दूसरी तरफ विश्वविद्यालय के SC ST टीचर्स फोरम ने भी रिले भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनकी मांग भी विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति प्रोफेसर विपिन श्रीवास्तव को हटाने की है। प्रोफेसर श्रीवास्तव को हटाने की मांग इसलिए आई है क्योंकि जिस समिति ने रोहित और उनके चार साथियों को निलंबित किया था वह उस समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन छात्र और अध्यापकों को विश्वविद्यालय में आने की अनुमति देने से क्या आंदोलन खत्म समझा जाए? हमने यह सवाल इसी एसटी टीचर्स फोरम के प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण से पूछा। छात्रों को उनके रिसर्च लेबोरेटरी में आने देने से आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन का सिर्फ तरीका बदला गया है। आप ये ना भूलिए कि आंदोलन हैदराबाद से दूसरे विश्वविद्यालयों में भी फैला है। ये थे प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण के शब्द। आंदोलन तो शायद एक नए तरीके से चलेगा, लेकिन आज रात 12 बजे बहुत सारे छात्र और अध्यापक एक मोमबत्ती प्रदर्शन करने वाले हैं। वजह यह है कि अगर रोहित आज जिंदा होते तो वह अपनी 26वीं सालगिरह मनाते। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले में आज शोधकर्ता प्रयोगशाला में पहुंचे। रुख महाराष्ट्र का करते हैं। महाराष्ट्र के धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदियों के खिलाफ एक मुहिम सी छिड़ती नजर आ रही है। इसी क्रम में अब बारी है मुंबई की हाजी अली की दरगाह। हाजी अली दरगाह में प्रवेश को लेकर भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन संस्था ने मुंबई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई अभी जारी है। मुंबई से अश्विन अघोर की रिपोर्ट।
शनि सिंगणापुर के मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के खिलाफ भूमाता ब्रिगेड ने 26 जनवरी को एक आंदोलन छेड़ा, जिसके बाद भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के सदस्यों को भी अपने मुहिम को मदद मिलती नजर आई। 26 जनवरी के इस आंदोलन के बाद भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के सदस्यों ने मुंबई के आज़ाद मैदान पर हाजी अली दरगाह के प्रवेश निर्बंधों के खिलाफ धरना आंदोलन किया। इस बारे में हमने भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की प्रमुख नूरजहां नियाज से बात की।
हमारा ऐसा मानना है कि मजहब के जितने भी धर्म स्थल है, जो भी मजहब से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशन है या सर्कल है, कहीं पर मर्दों की मक्तेदारी हमेशा रही है और वो उसका इस्तेमाल करके, मजहब का इस्तेमाल करके औरतों को ऑप्रेस करने में लगे हुए हैं कई सदियों से। लेकिन ये कब तक चलेगा? क्योंकि औरतों में भी जागृति आ रही है, अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो रही है, उस पर सवाल उठा रही है और वो अधिकारों को लेने की पूरी कोशिश में लगी है। मतलब औरतों का हमारा ऐसा मानना है कि हमारा मजहब है, हम उसके हिस्सा है, तो उसके अंदर जो हमारे हक बनते हैं वो भी हमें मिलने चाहिए। जो धार्मिक संस्थाएं जो लोग चलाते हैं, जिस तरह के ट्रस्टीज और मैनेजमेंट में मंदिरों के बैठे हैं, उनकी कहीं पर अभी उनको कहीं पर अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। और जो औरतों धार्मिक हक मांग रही है, इसके ऊपर उनको अपनी अपनी राय और अपनी सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा।
ये थी नूरजहां नियाज। हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदियों को लेकर दरगाह ट्रस्ट अपनी भूमिका पर टिका हुआ है। उनके मुताबिक हाजी अली दरगाह के मज़ार के करीब मुस्लिम महिलाओं का जाना धर्म के खिलाफ है और उन्हें ऐसा करने देना पाप हो सकता है। इस तरह का हलफनामा उन्होंने हाईकोर्ट में भी दायर किया है। उनसे बात करने की कोशिश जब की गई, तब ट्रस्ट की ओर से ये कहा गया कि चूंकि ये मामला अदालत में चल रहा है, इस पर इस वक्त कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।
ये थी भोपाल से शुरह नियाजी की रिपोर्ट। और अब बताते हैं कि कल इंडिया बोल में हम किस पे बात करेंगे।
बीबीसी इंडिया बोल। स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन और डिजिटल इंडिया, या फिर पीने का साफ पानी, गांव देहात में स्कूल और अस्पताल, भारत को पहले क्या चाहिए, सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? यही है शनिवार 30 जनवरी के इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच मुफ्त फोन करें इन नंबरों पर 1811-7000 और 1811-7001।
बीबीसी इंडिया बोल।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर कार्यक्रम में। इससे पहले कि हम विवेचना की बात करें, एक भूल सुधार। पिछली रिपोर्ट जो आपने सुनी वो शुरह नियाजी की नहीं बल्कि मुंबई से अश्विन अघोर की रिपोर्ट थी। और अब आज की विवेचना। 30 जनवरी 1948 को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूरा भारत इस खबर को सुनकर अवाक रह गया था। अगले दिन उनकी शव यात्रा में समाज के हर तबके के करीब 10 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। आज की विवेचना में रेहान फजल याद कर रहे हैं महात्मा गांधी की उस शव यात्रा को।
गांधी के निधन पर शायद सबसे यादगार श्रद्धांजलि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की तरफ से आई थी, जिन्होंने कहा था कि उनकी हत्या बताती है कि अच्छा होना कितना खतरनाक भी हो सकता है। गांधी के बारे में एक अमरीकी पत्रकार विंस्टन शीन ने भी लिखा था, वो खादी की शाल ओढ़े हुए एक बूढ़ा शख्स ही तो था, लेकिन जब वो मरा तो सारी मानव जाति अपने आंसू नहीं रोक पाई और फूट फूट कर रोई। विंस्टन शीन दुनिया के कई अशांत क्षेत्रों की घटनाओं को कवर करते हुए 1947 में भारत पहुंचे थे और महात्मा गांधी के मुरीद बन गए थे। ये इत्तेफाक था कि जब नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी तो वो वहां से सिर्फ 10 गज की दूरी पर खड़े थे। उन्होंने न्यूयॉर्क हेरल्ड ट्रिब्यून में लिखा,
मैंने एक टैक्सी की और गांधी जी की प्रार्थना सभा से पहले ही बिरला हाउस पहुंच गया। अभी 5 नहीं बजे थे और लोग पैदल, कार और तांगों से गेट के सामने उतर रहे थे। जब मैं प्रार्थना स्थल पर पहुंचा तो वहां बीबीसी के संवाददाता बॉब स्टिमसन खड़े थे। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बीबीसी की तरफ से गांधी को कुछ सवाल भेजे हैं, शायद गांधी आज उनका जवाब दें, इसलिए मैं प्रार्थना के बाद उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। अचानक उनकी नज़र अपनी घड़ी पर गई और वो बोले, बहुत अजीब है कि गांधी जी को प्रार्थना सभा में पहुंचने में देरी हो गई है। हम दोनों ने फिर अपनी घड़ी की तरफ देखा, उस समय 5:12 हुए थे। तभी बॉब ने कहा, वो रहे गांधी जी। बाद में मैंने कहीं पढ़ा कि उस समय गांधी जी चप्पल पहने हुए थे, लेकिन मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दी। मुझे तो लगा कि वो नंगे पैर ठंडी घास पर चल रहे थे। तभी हमें 4 दबे हुए धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बॉब से पूछा, ये क्या था? जैसे ही बॉब ने कहा मुझे नहीं पता, मैंने उनके चेहरे की तरफ नज़र घुमाई और वो मुझे अचानक पीला पड़ता दिखाई दिया। मेरे मुंह से निकला, नॉट महात्मा, और मुझे पता चल गया क्या हुआ था।
इस समय गोली चली, वहां 20 वर्षीय देवदत्त भी खड़े थे। उन्हें वो पूरा दृश्य अभी तक याद है जैसे वो कल की ही बात हो।
हमने देख लिया था, एक घुटा हुआ सिर वाला और फौजी ने वर्दी पहनी हुई थी, खाकी सी, और बहुत टेंस, मेरे से 3-4 आदमी छोड़ के खड़ा था। तो निकाल करके उसने पिस्तौल मारे, सामने खड़े हो सीधे मारी, हमको समझ भी नहीं अभी क्या कर रहा है, झुका और झुकते ही उसने लगा दिया। तो जब ठा ठा हुआ तो गिर गए, तो लोगों ने तो उनकी तरफ गड़े, हम उस अकेले गांधी को देख रहे थे, अकेले लेटा हुआ था, तो हमको तो उसकी बुझती आंखें ही रोलिंग आईज। उसके बाद चल पड़े, वो 30 जनवरी मार्ग से पैदल फिर वापस यूनिवर्सिटी गए। हम फिर जब निकले हैं तो हमने बियाबान देखा, दिल्ली की सड़कों पर कोई नहीं, खाली हो गई थी, ढाबे बंद हो गए थे, तब हमको पता लगा कि ये कौन था।
इस बीच बदहवास बीबीसी संवाददाता बॉब स्टिमसन टेलीफोन की तलाश में बाहर भागे। थोड़ी देर बाद बीबीसी पर उनकी आवाज सुनाई दी।
At 3:05 Indian time, Mr. Gandhi came out of Birla House. And because he was a little late for evening prayers,
उस समय भारत के वॉयसराय लॉर्ड माउंटबेटन की 18 साल की बेटी पामेला माउंटबेटन गवर्नमेंट हाउस के अपने बेडरूम में तैयार हो रही थी। तभी उन्होंने रेडियो पर गांधी की हत्या की खबर सुनी।
I remember being in my bedroom and with the radio turned on and hearing this unbelievable news that Gandhi ji had been assassinated.
मुझे याद है, मैं अपने बेडरूम में तैयार हो रही थी, तभी मुझे रेडियो पर गांधी की हत्या की अविश्वसनीय खबर सुनाई दी। अचानक मैंने पाया कि मेरी आंखों से आंसू बह निकले, जैसे मेरे परिवार का कोई बहुत ही करीबी शख्स इस दुनिया से चला गया हो।
उधर कुछ ही दिनों पहले पत्रकारिता में अपने करियर की शुरुआत कर चुके कुलदीप नैयर अपने अखबार अंजाम के दफ्तर में बैठे हुए थे।
उन दिनों में ये जो टेलीप्रिंटर है, अब तो खैर टेलीप्रिंटर रहे भी नहीं जहाँ है, उस वक्त कोई अगर बहुत ज़रूरी खबर होती तो घंटी बजती थी, तो घंटी बजी तो मैं एकदम वहाँ पहुँचा तो उसमें था गांधी शॉट एट, वो इतना ही था। तो मैंने किसी से कहा भी मुझे तो बिरला हाउस में छोड़ दो, तो आदमी मुझे छोड़ गया बिरला हाउस में। कोई कुलीग ही था, उसके पास मोटरसाइकिल था। उस वक्त मैंने पंडित नेहरू को देखा, सरदार पटेल को देखा, मौलाना आज़ाद कुर्सी पर बैठे गम में डूबे हुए। उस वक्त गवर्नर जनरल माउंटबेटन नहीं आए थे, मेरे होते ही आए, तो उन्होंने खैर बॉडी को सैल्यूट तो किया, तो महसूस किया मैंने कि आज हिस्ट्री यहीं पे फूट रही है। महसूस किया कि आज अपने सिर पे से कोई हाथ रखने वाला नहीं है। बापू एक हमारे सबके गम भी रिप्रेजेंट करते थे, हमारी खुशियाँ, हमारी एस्पिरेशंस, हमारी सोच, सब कुछ वही तो थे।
पामेला माउंटबेटन कहती हैं कि करोड़ों भारतवासियों की तरह उन्हें भी लगा कि उनके परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया से चला गया है।
Literally, India came to a standstill. Eventually, my father dashed down to Bielehaus, and as he arrived, one in the crowd called out, "It was Muslim did it."
जैसे ही ये खबर फैली लगा कि पूरा भारत जैसे रुक गया हो। मेरे पिता तुरंत बिरला हाउस पहुंचे। जैसे ही वो कार से उतरे, भीड़ में किसी ने चिल्लाया, मुसलमान ने गांधी को मारा। मेरे पिता ने तपाक से जवाब दिया, यू फूल, इट वॉज अ हिंदू। वास्तव में उस समय तक किसी को पता नहीं था कि हत्यारा कौन था, लेकिन मेरे पिता को लगा कि भारत में खून खराबा बचाना है तो यही सबसे उचित जवाब है।
The body of Gandhi is brought to the balcony, earthly remains of the spiritual and political father to millions, a saint and even a god to many.
किसी ने माउंटबेटन के हाथों में गुलाब की कुछ पंखुड़ियां पकड़ा दी। उन्होंने नीचे पड़े गांधी के पार्थिव शरीर पर उन पंखुड़ियों को बिखेर दिया। ये उस शख्स को भारत के आखिरी वायसराय की अंतिम श्रद्धांजलि थी जिसने उनकी पर नानी के साम्राज्य का अंत किया था। इसके बाद माउंटबेटन नेहरू की तरफ मुड़कर बोले थे, तुम्हें देश को संबोधित करना है। नेहरू ने कहा, मैं नहीं कर सकता, मेरी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। माउंटबेटन ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, परेशान मत हो, ईश्वर तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या कहना है। ब्रॉडकास्टिंग हाउस जाते समय नेहरू की आंखों में आंसू बह रहे थे। उनके सचिव मथाई ने किसी चीज की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहा। नेहरू ने इशारे से उन्हें रोक दिया। वो गहन चिंतन में थे। कुछ मिनटों बाद जब ब्रॉडकास्टिंग हाउस के स्टूडियो नंबर 1 की हरी बत्ती जली तो नेहरू के शब्द उनके दिल से निकले।
फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर एंड आई डू नॉट क्वाइट नो व्हाट टू टेल यू एंड हाउ टू से इट। Our beloved leader, Bapu, as we called him, the father of the nation, is no more.
दोस्तों और साथियों, हमारे जीवन से एक रोशनी चली गई और अब चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्यारे नेता, हमारे देश के राष्ट्रपिता, जिन्हें हम बापू कह के पुकारते थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने कहा रोशनी चली गई, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि जो रोशनी इस देश में चमकी थी कोई मामूली रोशनी नहीं थी। हजारों साल बाद भी ये रोशनी बरकरार रहेगी और हजारों लोगों को ढांढस बंधाएगी।
गांधी के पार्थिव शरीर को बिरला हाउस की बालकनी पर रखा गया था।
And we went down to pay our respects. And I thought, there's something wrong. On the bier, lying there on the bier. I thought, it doesn't look like Gandhiji.
हम सब गांधी के अंतिम दर्शन के लिए बिरला हाउस गए। मुझे लगा कि वो गांधी नहीं हैं जिनसे हम बातें किया करते थे। उनका चेहरा जाना पहचाना नहीं था। तभी मैंने नोट किया कि उनके चेहरे पर उनका चश्मा नहीं था और बिना चश्मे के वो बहुत कमजोर और दुबले दिखाई दे रहे थे।
Because he distrusted machines, 50 servicemen pulled Gandhi's cortege, on which sit two of his sons.
जब बिरला हाउस से गांधी की शव यात्रा शुरू हुई तो लगा कि सारी मानव जाति दिल्ली की धरती पर उतर आई हो। मंत्री, कुली, महाराजा, दलित, गवर्नर, पर्दानशी, मुस्लिम औरतें, हर जाति, वर्ग, धर्म और चमड़ी के लोग अपने रंज का इजहार करते हुए उस शव यात्रा में आगे बढ़े। जब मशहूर फोटोग्राफर मार्गरेट बुर्के वाइट ने अपने लाइका लेंस से उस असाधारण दृश्य की तस्वीर ली तो उनके मन में आया कि वो इस दुनिया में अब तक जमा सबसे बड़ी भीड़ को अपने कैमरे में कैद कर रही हैं।
But it was going sort of 9 or 10 miles.
जमुना के तट पर जहां गांधी का अंतिम संस्कार होना था, बिरला हाउस से 9-10 किलोमीटर का रास्ता था। शव यात्रा को वहां पहुंचने में 5 घंटे लग गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मेरे पिता को लगा कि अगर उस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वो गांधी के पार्थिव शव के पास मौजूद लोगों को गांधी की चिता में धक्का दे देंगे। उन्होंने आदेश दिया कि सभी वीआईपी कीचड़ से सनी जमीन पर पालथी मारकर बैठ जाएं। लोगों के सामने उदाहरण पेश करने के लिए वो अपनी नीली साफ वर्दी पहने ही कीचड़ में बैठ गए और उनकी देखा देखी मैं और मेरी माँ भी जमीन पर बैठ गए।
उस समय 4 बज रहे थे और जल्दी इसलिए थी कि सूरज डूबने से पहले गांधी की चिता को अग्नि दी जानी थी।
Now as the flames begin to lick, now the fire is caught. Policemen sticks being raised to try and keep the crowds down. We're trying to move in closer to get a last glimpse of the father of our nation.
Some old village women brought up at the idea of sati, you know, when widows throw themselves in the flames of their husbands.
जैसे ही गांधी के बेटे रामदास ने गांधी की चिता को अग्नि दी, कुछ ग्रामीण औरतें विलाप करते हुए सती होने की कोशिश में चिता की ओर दौड़ी। उन्हें बड़ी मुश्किल से रोका गया। जैसे ही चिता की लपटें उठी, लोगों के मुंह से बेसाख्ता निकला, गांधी जी अमर रहें, गांधी जी अमर रहें।
Picked out the bones from the heap of ash and placed them in a brass pitcher containing Ganges water, milk, honey, curds, butter, sandalwood and saffron. While the bones were being recovered, a fragment of one of the bullets that killed Mr. Gandhi was found. It was handed to Mr. Nehru, whose hand shook as he received it.
पूरी रात गांधी की चिता पर सिर झुकाने वालों का तांता लगा रहा। जैसे ही भोर हुई, शोक में डूबे जवाहरलाल नेहरू ने गांधी की जल चुकी अस्थियों पर गुलाब के फूलों का एक गुच्छा रखा। उनके मुंह से निकला, बापू, आज तो मैं आपकी अस्थियों और राख के सामने श्रद्धा सुमन अर्पित कर पा रहा हूं, लेकिन कल मैं ये फूल कहां दूंगा और किसको?
ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन मति दे भगवान।
ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान।
रघुपति राघव राजा।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देता रिहान फजल का ये कार्यक्रम। और अब कार्यक्रम में बात करेंगे खेल समाचारों की। आदेश कुमार गुप्त मौजूद हैं। आज दो चीजें हुई, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत गया भारत और दूसरी ओर मार्टिना हिंगिस की जोड़ी।
जी हाँ, बिल्कुल। आज तो ऑस्ट्रेलिया में भारत छाया रहा क्योंकि महिला क्रिकेट टीम ने भी दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 10 विकेट से मात दी। हालांकि मैच में बारिश के कारण थोड़ी बाधा पड़ी और महिला टीम ने सीरीज़ अपने नाम की। तो उधर पुरुष वर्ग में भी भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का सितारा लंबे समय बाद चपका, क्योंकि विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद उनकी कप्तानी में भारत बांग्लादेश से वनडे सीरीज़ आ रहा, फिर दक्षिण अफ्रीका से 2020 और वनडे सीरीज़ आ रहा, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से भी 4-1 से वनडे सीरीज़ आ रहा। लेकिन आज भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 27 रन से मात दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, दरअसल टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने की दावत मिली, 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 184 रन बनाया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट पर 157 रन के स्कोर पर ही रोक दिया। तो इसी के साथ भारत ने सीरीज अपने नाम की। और जैसा आपने बताया कि सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला युगल वर्ग का खिताब अपने नाम किया। ये उनका 3रा ग्रैंड स्लैम खिताब है।
लगातार ये जोड़ी जो है वो कमाल दिखा रही है।
हाँ बिल्कुल, अभी तक तो काफी समय से अजय है।
बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त। और इससे पहले कि कार्यक्रम में आगे बढ़े, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। पूर्वोत्तर नाइजीरिया के एक बाजार में एक आत्मघाती हमलावर ने बम धमाका किया है। एक प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि उन्होंने 8 शव देखे हैं। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि उन्होंने एक व्यस्त बाजार में लोगों को भागते हुए देखा। बताया जा रहा है कि हमलावर एक महिला के भेष में आया था। पूर्वी सऊदी अरब की एक शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान हुई गोलीबारी की एक घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए हैं। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। डेढ़ घंटे बाद 9:30 बजे घटना चक्र लेकर फिर से हाजिर होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।